एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हमेशा तेरा, झरने गाए शांति का संदेश तेरा, धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को ग्रहण कर और हमारे दिलों को खोल दे कि हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सके। मेरे हर एक श्रोताओं को बहुतायत से आशीष दे और तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, मुझे तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ तेरे वचनों को बतलाने के लिए मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रिय श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है तुम्हारे लिए एक सहायक। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14 का 18 और 16 में हम यह प्रतिज्ञा पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यह आश्वासन वचन यीशु अपने चेलों को अपने इस जगत को छोड़कर स्वर्ग जाने से पहले दिए थे। उसका मृत्यु का समय बहुत निकट था और उसके बाद वह स्वर्ग जाने वाले थे। हालांकि सलीबी मौत ने यीशु के चेलों को हक्का बक्का दुखी और भयभीत कर दिया था, पुनरुत्थान उनके जीवन में सवेरा लाया। जब मसीह ने मृत्यु की बेड़ियों को तोड़ा तब परमेश्वर का राज्य उनके हृदयों में उदय हुआ। अब ना बुझने वाली आग उनके मन के भीतर जल रही थी। मतभेद जो कुछ सप्ताह पहले शिष्यों के बीच भयानक अवरोध बनकर खड़े थे पिघल गए। उन्होंने अपने दोषों को एक दूसरे के सामने स्वीकार किया और अपने स्वर्ग गए राजा यीशु को प्राप्त करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया। जैसे जैसे वे प्रार्थना में दिन बिताते थे, इस एक बार के बिखरे हुए झुंड की एकता बढ़ती गई। एक ना भूलने वाला दिन जब वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे तो एक तूफान की गर्जन की तरह शोर उनके बीच से गुजरा, जैसे कि उनके दिलों में जलने वाली आग दिखाई दे रही हो। प्रत्येक सिर पर आग की लपटें उतरी, भीषण आग की तरह पवित्र आत्मा उन पर उतरा। आत्मा से भरपूर चेले अब यीशु में प्राप्त नई खुशी व प्रबल प्रेम को अपने में समा नहीं पा रहे थे। वे सार्वजनिक रूप से एवं उत्साहपूर्वक उद्धार की खुशखबरी सुनाने लगे। उस शोर से सचेत होकर बहुत से स्थानीय नागरिक और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों की भीड़ उस घर में जमा होने लगी। आश्चर्य और प्रेम से भरे उन्होंने अपनी भाषा में आम गलीलियों के मुंह से परमेश्वर के महान कार्यों की शक्तिशाली गवाहियां सुनी। हमें समझ में नहीं आया, कुछ ने कहा, इसका क्या मतलब है? दूसरों ने नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहा, वे नशे में हैं। ऐसा नहीं है, पतरस ने भीड़ के शोर से ऊपर ऊंचे शब्द में कहा, अभी सुबह के केवल 9 बजे हैं। तुमने जो सुना और आंखों से होता हुआ देखा है वह इसलिए क्योंकि पुनर्जीवित यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाया गया है और अब हमें पवित्र आत्मा दे रहा है। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ना कि एक व्यक्तिहीन शक्ति। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। प्रेरितों के काम 15:28 कहता है, जैसे कथन यह बताते हैं कि शुरुआती विश्वासियों ने उसे एक व्यक्ति के रूप में देखा। मसीह ने भी एक अलग व्यक्ति के रूप में उसे संबोधित किया। उसने कहा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों को तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:14। त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख करते हुए शास्त्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में वर्णन करता है। इसे हम पाते हैं मत्ती 28:19 में और 2 कुरिन्थियों 13:14 में भी। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है, वह विवाद करता है। उत्पत्ति 6:3 वह सिखाता है। लूका 12:12 दोषी ठहराता है। यूहन्ना 16:8 कलीसिया की गतिविधियों का निर्देशन करता है। प्रेरितों के काम 13:2 सहायता एवं मध्यस्थता करता है। रोमियो 8:26 प्रेरित करता है। 2 पत्रस 1:21 एवं पवित्र करता है। 1 पत्रस 1:2 यह सभी कार्य केवल शक्ति प्रभाव या परमेश्वर के गुणों नहीं किए जा सकते। केवल एक व्यक्ति ही इन्हें कर सकता है। पवित्र आत्मा वास्तव में परमेश्वर है। शास्त्र पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में देखता है। पतरस ने हनानिया से कहा कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह हम पाते हैं प्रेरितों के काम 5:3-4 में। हनानिया आरंभिक कलीसिया का सदस्य था। हनानिया और उसकी पत्नी ने अपने खेत बेचे थे और उसका रकम कलीसिया के सामने कलीसिया के अगुओं के पास लाकर रख दिया। लेकिन हनानिया और उसके पत्नी कुछ रकम अपने घर में अपने साथ रखा था और कलीसिया के सामने यह दिखा रहे थे कि उन्होंने सब कुछ कलीसिया के सामने अर्पण कर रहे हैं। इसको पतरस को पवित्र आत्मा ने बता दिया। इसीलिए पतरस हनानिया से कहता है कि हनानिया तूने मनुष्य से झूठ नहीं बोला है लेकिन तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। यह दिखलाता है कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। शास्त्र पवित्र आत्मा के साथ दिव्य गुणों को जोड़ता है। वह जीवन है। पौलुस ने उसे जीवन का आत्मा के रूप में संदर्भित किया। रोमियो 8:2 वह सत्य है। मसीह ने उसे सत्य का आत्मा कहा। यूहन्ना 16:13 में पवित्र आत्मा का प्रेम रोमियो 15:30 और परमेश्वर का पवित्र आत्मा इफिसियों 4:30 जैसे भाव बताते हैं कि प्रेम एवं पवित्रता उसके स्वभाव का हिस्सा है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। वह आत्मिक वरदानों को जैसा वह चाहता है वैसा ही प्रत्येक को बांट देता है। 1 कुरिन्थियों 12:11 वह सर्वव्यापी है। वह सर्वदा अपने लोगों के साथ रहेगा। यह हम पढ़ते हैं, यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं यूहन्ना 14:16 में, जिसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कोई भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। भजन संहिता 139 का 7-10 में हम यह बात पाते हैं, वह सर्वज्ञ भी है क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है और परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। 1 कुरिन्थियों 2:10-11। परमेश्वर के कार्य पवित्र आत्मा से भी जुड़े हुए हैं। सृष्टि और पुनर्थान दोनों में वह शामिल था। एलिहू कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। यह हम पढ़ते हैं अय्यूब 33:4 में। और भजनकारी ने कहा, तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। भजन संहिता 104:30। पौलुस ने दावा किया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। रोमियों 8:11। केवल एक सर्वव्यापी व्यक्तिगत परमेश्वर ही, ना कि व्यक्तिहीन प्रभाव, ना कोई सृष्टि किया हुआ प्राणी, दिव्य मसीह को एक व्यक्ति मरियम के पास लाने का चमत्कार कर सकता है। पेंतिकॉस्ट के दिन आत्मा ने एक परमेश्वर मनुष्य यीशु को सार्वभौमिक रूप से सभी इच्छुक प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रस्तुत किया। बपतिस्मे की विधि में मत्ती 28:19, धर्म द्वितीय आशीर्वाद में 2 कुरिन्थियों 13:14 एवं आत्मिक वरदानों के उपदेश में 1 कुरिन्थियों 12:4-6 में पवित्र आत्मा को पिता एवं पुत्र के साथ बराबर माना जाता है। अनंतकाल से परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व के भीतर तीसरे सदस्य के रूप में रहता था। पिता, पुत्र एवं आत्मा समान रूप से स्व अस्तित्व हैं, हालांकि प्रत्येक समान है, त्रिएक के कार्यों में एक व्यवस्था होती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई को, जैसा कि यीशु में देखा गया है, सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। जब आत्मा विश्वासियों के पास आता है तो वह मसीह का आत्मा के रूप में आता है। वह स्वयं के अधिकार से, स्वयं की योग्यता के साथ नहीं आता है। इतिहास में उसकी गतिविधि मसीह के उद्धार के विशेष कार्य पर केंद्रित है। पवित्र आत्मा मसीह के जन्म में सक्रिय रूप से शामिल था। लूका 1:35 बपतिस्मा पर उसकी सार्वजनिक सेवकाई की पुष्टि की। मत्ती 3:16-17 एवं मसीह द्वारा क्षतिपूर्ति, बलिदान एवं पुनर्स्थान के लाभों को मानवता तक पहुंचाया। रोमियों 8:11 परमेश्वरत्व में आत्मा लागू करने वाले की भूमिका को पूरा करता दिखाई पड़ता है। जब पिता ने अपना पुत्र जगत को दिया, यूहन्ना 3:16, उसका पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण हुआ, मत्ती 1:18-20, पवित्र आत्मा योजना को पूर्ण करने और वास्तविक करने आया। पवित्र आत्मा की सृष्टि में आत्मिक सहभागिता सृष्टि में उसकी उपस्थिति से दिखाई देती है। उत्पत्ति 1:2 जीवन की उत्पत्ति एवं निर्वाह उसके संचालन पर निर्भर करता है। उसके चले जाने का मतलब है मौत। बाइबल ने कहा, यदि परमेश्वर मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अय्यूब 34:14-15। इसे हम तुलना कर सकते हैं अय्यूब 33:4 से। हम आत्मा के सृजनात्मक कार्य के प्रतिबिंब को प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो परमेश्वर के लिए इच्छुक हैं, उसके पुनः सृजनात्मक कार्य में देख सकते हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता आत्मा के माध्यम से व्यक्तियों के भीतर अपने कार्य को करता है। इसलिए अवतरण में, सृष्टि में एवं पुनः सृष्टि में आत्मा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिज्ञा किया आत्मा है, जिसके बारे में यीशु ने अपने चेलों को कहा था। हमें पवित्र आत्मा के निवास स्थान के रूप में नियत किया गया था। 1 कुरिन्थियों 3:16 आदम और हवा के पाप ने उन्हें दोनों बाघ और भीतर वास करने वाले आत्मा से अलग कर दिया था। वह अलगाव अभी जारी है। जल प्रलय से पूर्व दुष्टता की विशालता ने परमेश्वर को यह घोषणा करने पर मजबूर कर दिया, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता ना रहेगा। उत्पत्ति 6:3। पुराने नियम के समय में आत्मा ने विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष कार्य करने के लिए तैयार किया। यह हम पढ़ते हैं और पाते हैं गिनती 24:2 में, न्यायों 6:34 में और पहला सामुएल 10:6 में। कई बार वह व्यक्तियों में होता है। निर्गमन 31:3, यशाया 63:11। निसंदेह वास्तविक विश्वासियों को हमेशा उसकी उपस्थिति का एहसास था, लेकिन भविष्यवाणी ने प्रकट किया कि वह सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। ओयल 2:28। एक ऐसा समय जब आत्मा का एक बड़ा प्रकटन एक नए युग का प्रारंभ करेगा। जब तक दुनिया हड़पने वाले के हाथों में रही, आत्मा को परिपूर्णता से उंडेले जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। इससे पहले कि आत्मा को सभी मनुष्यों पर उंडेला जा सके, मसीह को अपनी सांसारिक सेवकाई को पूरा करना एवं क्षतिपूर्ति बलिदान देना था। मसीह की सेवकाई को आत्मा की सेवा के रूप में इशारा करते हुए यहूना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। परंतु सुसमाचार यीशु को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हुए प्रकट नहीं करते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ ही घंटे पहले यीशु ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यूहन्ना 14:16-17। क्या आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा क्रूस पर प्राप्त हुई? सलीबी मौत दिए जाने वाले शुक्रवार को कोई कबूतर प्रकट नहीं हुआ, केवल अंधकार और बिजली की चकाचौंध हुई। अपने पुनरुत्थान के बाद ही यीशु ने अपने चेलों पर आत्मा फूका। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20:22 में। उसने कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर यरूशलेम में ठहरे रहो। लूका 24:49। यह सामर्थ तभी प्राप्त होगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो विश्वासियों को पृथ्वी के अंतिम छोर तक गवाह बनाएगा। प्रेरितों के काम 1:8। यूहन्ना ने लिखा, आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:39 में। पिता के द्वारा मसीह के बलिदान की स्वीकृति पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए पूर्व आवश्यकता थी। नए युग का आरंभ तब हुआ जब हमारा विजयी प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठा। केवल तभी वह पवित्र आत्मा को उसकी पूर्णता में भेज सकता था। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के पश्चात पत्रस कहता है, उसने पवित्र आत्मा अपने चेलों पर उंडेल दिया। प्रेरितों के काम 2:33। जो उत्सुकता से इस घटना की आशा करते हुए इकट्ठे होकर एक साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों के काम 1:4-14 में हम यह पढ़ते हैं, कलवरी के 50 दिन पश्चात पेंतिकोस्त के दिन आत्मा की उपस्थिति की संपूर्ण शक्ति के साथ नया युग फूट पड़ा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:2-4 में। यीशु एवं पवित्र आत्मा दोनों के विशेष कार्य पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे। पवित्र आत्मा की पूर्णता तब तक नहीं दी जा सकती थी जब तक कि यीशु का विशेष कार्य समाप्त नहीं हो जाता। और इसीलिए यीशु का आत्मा द्वारा गर्भ धारण हुआ, मत्ती 1:8-21 आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाया, मरकुस 1:9-10 आत्मा के नेतृत्व में चला, लुका 4:1 आत्मा द्वारा उसने आश्चर्य कार्य किए, मत्ती 12:24-32 आत्मा द्वारा कलवरी पर स्वयं को दे दिया, इब्रानियों 9:14-15 में पाते हैं, और एक तरीके से आत्मा द्वारा पुनर्जीवित भी किया गया, रोमियों 8:11 में हम इसे पढ़ सकते हैं। यीशु पहला व्यक्ति था जिसने पवित्र आत्मा की पूर्णता का अनुभव किया। अद्भुत सत्य यह है कि हमारा प्रभु उन सभी पर अपना आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है जो उसे ईमानदारी से चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह प्रतिज्ञा दिए कि वह उनके लिए एक सहायक भेजेगा और वह पवित्र आत्मा था। उन्हें उस पवित्र नगर यरूशलेम में रुकने के लिए कहा गया था और वे जब यीशु मसीह का आज्ञा पालन किए, एक चित होकर प्रार्थना किए, तो परमेश्वर ने अपना आत्मा जैसा यीशु मसीह उनसे प्रतिज्ञा किया था उन्हें दिया। और यह प्रतिज्ञा हम सभी लोगों के लिए है, हम सभी विश्वासियों के लिए भी है। जब हम उसके पास आते हैं, उसे पवित्र आत्मा के लिए विनती करते हैं, आइए हम उसे अपनाएं और खुशी से उसको अपने जीवन में आने दे और हम जीवन और सामर्थ पाए। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, हम तेरे आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, हम तेरे आत्मा का मांग करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे हृदय में आने दे और हमें तेरे रास्ता में चला। हम विश्वास करते हैं तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।